जी बिस्मिल्लाह कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा सवाल एक ये था कि ये जो मुंजमद हवास होते हैं सर, ये किसे कहते हैं? इसकी मुझे थोड़ी सी वो बताएं। और हेजर, ये दो लफ्ज सर मेरे जहन में बहुत अच्छे से चल रहे हैं।
दूसरा क्या लफ्ज फरमाया?
हेजर सर, हेजर, हेजर किसे कहते हैं जी?
जुदाई को हिजर कहते हैं, जुदाई को।
अच्छा,
जब किसी चीज, इसी से लफ्ज हिजरत है ना, अपने असल इलाके से बाहर निकल जाना, छोड़ देना, जुदा हो जाना।
सर वो एक्चुअली हिजर है, हलवे वाला है की बात कर रही है हिजर, जो कुरान में
वो हजर यानी के पत्थर
जी,
उसका मतलब है पत्थर जी। वो इंजमाद से है, जमा हुआ, जामिद।
तो
पत्थर में क्या होता है?
तो ये ना,
जी यही मुंजमिंद हवास। जब हवास जाम हो जाएं, मुंजमिद हो जाएं, फ्रीज कर जाएं, काम ना करें।
ओके सर।
देखे ना, एक है हवास की हरकत, ठीक है। फिर ये हरकत जो है ये दो तरह से है, एक ये मुनकसिम हवास है, दूसरे गैर मुनकसिम हवास है।
जी सर,
ये तो दो किस्में हो गई। अब इसके फिर दर्जे हैं। बेदारी में हवास की एक रफ्तार है, नींद में दूसरी है, लैलतुल कदर में तीसरी है, मौत के वक़्त चौथी है, यौमुल कयामा में पांचवी है, फिर एक और हवास की रफ्तार है जिसे हशर नशर कहते हैं।
बिल्कुल,
ये सब हवास। देखे ना, जब आप दुनिया में आए तो क्या साथ लेकर आए? हवास। कौन से हवास? जब आपको अल्लाह ने कुन कह के वजूद बख्शा
जी सर,
तो आपके अंदर हवास मुंजमिद थे। उनको हरकत में लाने के लिए अल्लाह ने कहा लस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्या हुआ कि जब अल्लाह की आवाज फैली, अल्लाह की आवाज के जेरे असर आपके अंदर समात एक्टिवेट हो गई, जब वो आवाज आपके इनर में गूंजी तो क्या हुआ, हिस्सियात दर्जा ब दर्जा तरतीब पाती चली गई।
जी सर, जी बिल्कुल सही।
तो गोया वो मुंजमिंद हवास जो थे, वो उस हालत में क्या कहेंगे कि हवास मुंजमिंद थे।
मुंजमिंद थे जी सर, अब समझ आ गया। सही।
अब बच्चा पैदा होता है तो उसके हवास मुंजमिंद होते हैं, लेकिन वो रफ्ता रफ्ता अपने हवास का इस्तेमाल सीखता है। सबसे पहले वो आवाज सुनता है, आवाजें सुनता है, फिर रफ्ता रफ्ता वो माँ की खुशबू से आशना होता है, फिर जाके कहीं उसको दिखना शुरू होता है, उसकी नजर टिकना शुरू होती है, वो चीजों को नजर से आइडेंटिफाई करना सीखता है, फिर उसका नुत्क काम करता है, फिर उसके लम्स काम करता है। ये सारा क्या है? वो जो इंजमाद होता है हवास का, वो 5 साल में 10 साल में पिघलता है।
शुक्रिया सर।
वेलकम। ये जो पत्थरों की पूजा से मना किया गया है ना, बुतों की,
जी सर,
पत्थर की,
जी सर,
पत्थर का जिक्र करके देखें, जब हमारी तवज्जो किसी पत्थर में, अब जैसे फिरौन वो पिरामिड्स बना के, तो जिल औताद कहा उसको, वो जो पत्थरों वाली मेखें बना के बैठ गया, क्या हुआ उसके हवास पत्थरों में इन्वॉल्व हो गए, तो वो हवास का इंजमाद हो गया,
इंजमाद जमूद कायम कर लिया,
ठीक हो गया ना, जम गए। इसीलिए जब आप
सर,
किसी पत्थर को पूजा करते हैं तो क्या होता है, आपके हवास काम नहीं करते, वो भी जामिद हो जाते हैं।
जी
جب آپ اللہ رب کریم کی عبادت کرتے ہیں اس پہ فوکس کرتے ہیں, چونکہ اللہ مسلسل ایک حرکت, حیات کہتے ہی حرکت کو, تو پھر آپ کے اندر بھی تحریکات ہوتی ہیں اور حرکت ہوتی ہے, لہذا پھر آپ پرفارم کرتے ہیں.
جی سر بالکل,
جی
بالکل, شکریہ سر, تھینک یو سو مچ,
ویلکم.
سر میرا ایک سوال ہے.
ارشاد.
یا کنا وضو وی کنا صفائی, اس میں سر ہم اللہ کے بندے ہیں, یا کنا وضو وی یا کنا صفائی, اور ہم اسی سے ہی استعانت طلب کرتے ہیں.
جی جی
سر, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے؟
یعنی آپ افرم کر رہے ہیں, اللہ رب کریم ان الفاظ کے ذریعے آپ سے افرمیشن چاہ رہے ہیں. کیا ایا کا, یہ جو ایا کا لفظ ہے, تیری ہی بات مانتے ہیں, نابودو بات ماننا, ہم نے عبادت کرنا ترجمہ کر دیا. جب آپ بات مانیں گے تو وہی کریں گے جو بات کہنے والا کہہ رہا ہے, اور اس بات کو ماننے میں آپ کو جو بھی استعانت مدد چاہیے وہ بھی آپ کو وہی فراہم کرے گا. دیکھیں نا, آپ ایک بندے کے دفتر میں کام کرتے ہیں, وہ جو بھی آپ کی ضرورت ہے وہ کون پوری کرے گا؟ آپ مالک کی بات مانیں گے اور بات مان کے کام کرنے کے لیے جو بھی لوازمات چاہیے, پین چاہیے, کاغذ چاہیے, تو وہ مالک ہی فراہم کرے گا نا.
بالکل سر, ایسے ہی.
تو اسی لیے بار یہ آپ سے افرم کروایا جا رہا ہے, یا کنا بدو, میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, یعنی تیری ہی بات مانوں گا, یا کنا استعین, اور مجھے تیری ہی مدد کی ضرورت ہوگی. بات ماننے میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, آپ یہ افرم کر رہے ہیں کہ جی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, آپ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی بات مان کے عمل کرنے میں.
اس کے بعد پھر سر اہدنا صراط المستقیم آئے گا,
اس کے بعد آئے گا کہ مجھے روشنی دکھا, ہدایت دے, صراط مستقیم, سرت کہتے ہیں گلے کی نالی کو, یعنی سسٹم میں داخلے کا راستہ. دیکھیں نا, عربی میں راستے کے لیے دو لفظ ہیں, ایک سرت ہے اور دوسرا سبیل ہے. سبیل کا مطلب ہے راستہ, جیسے سڑک, جیسے میں نے مثال عرض کی تھی کہ آپ چھاونی میں جائیں تو ساری چھاونی گھوم کے آ جائیں, یہ سبیل ہوئی. سڑکیں جو ہیں جن پہ آپ گھومتے ہوئے, درخت دیکھتے ہوئے, بلڈنگ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, یہ سب سبیل ہے. لیکن آپ ریکروٹمنٹ سینٹر کے لائن میں لگ کے فارم لیتے ہیں کہ جی مجھے فوج میں داخلہ چاہیے, تو کیا ہوا کہ آپ فوج کے سسٹم میں داخلہ جو چاہ رہے ہیں یہ سرت کہلائے گا, یہ صراط کہلائے گا. مستقیم کا مطلب ہے کہ قیم, یعنی کہ لفظ مستقیم کہ میں اس کو قیام دوں, یعنی میرا وجود اس سسٹم کے قیام میں اپنا رول ادا کرے.
جی سر,
ہم نے ترجمہ کر دیا سیدھا راستہ. مستقیم فارسی میں سیدھے کو کہتے ہیں, وہاں ایک خط منحنی ہوتا ہے اور ایک خط مستقیم ہوتا ہے. یہ فارسی کے لفظ کا ترجمہ آپ عربی کے لفظ کو فارسی کے لفظ سے ٹرانسلیٹ کریں گے, یہ کون سا قاعدہ ہے؟ مستقیم अरबी का लफ्ज है ना, तो अरबी में इसका मफहूम तो कीम से लफ्ज बनता है, कीम से लफ्ज बनते हैं मुकीम, कयाम, कयूम, कायम। यानी कि आप कह रहे हैं कि मुझे ऐसी हदायत दे के मैं सिस्टम में अपने इसको स्ट्रेंथन करने के लिए अपना रोल अदा करूं। दिस इज व्हाट वी आर मेड फॉर, वी आर मेड टू स्ट्रेंथन द सिस्टम। अब देखे ना, अगर एक बंदा नमाज में खड़ा होके कह रहा है देना सिराते मुस्तकी, मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे, तो क्या मतलब है वो सीधे रास्ते पे नहीं है? अब अगर वो नमाज की हालत में जैन वजू करके जाय नमाज बिछा के खड़ा हो गया, तो क्या वो सीधे रास्ते पे नहीं है? फिर देखे ना, जब वो खड़ा हो गया फिर वो कह रहा है देना सिराते मुस्तकीम। तो अगर हम इसका तर्जमा सीधा करेंगे तो ये बितुका हो गया सारा अमल। लेकिन अगर आप अब सीधे रास्ते पे खड़े होके कहें कि बारे ला, तो मुझे अपने सिस्टम में अपना रोल, जो मेरा रोल है, मुझे वो अदा करने की तौफीक दे। तो मुझे गाइड करके मैं किस तरह से सिस्टम को फर्दर स्ट्रेंथन करूं। वाज़े हो गया
जी सर? बिल्कुल सर। एक सवाल और था सर, ये जो दुरूद शरीफ है ये भी बहुत है, जैसे एक दुरूद तले जीना है, एक दुरूद खिज़री है, ऐसे ही मुख्तलिफ दुरूद है सर, तो सर ये सर राबता है ये तो?
जी हाँ,
सलात
असल में देखिए, अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकते यसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा। ये आयत आपने बड़ी दफा सुनी, मफहूम क्या बना? अगर ये कहा जाए कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दरूद भेजते हैं, तुम भी भेजो, और हम क्या कह रहे हैं, अल्लाह उम्मा सल्ले अला, अल्लाह तू भेजी जा, ये क्या बेतुकी बात हुई? मफहूम गलत कहां हुआ? जब आपने स्वल का तर्जमा रब्त के बजाय दरूद कर दिया, एक जगह स्वल का तर्जमा आपने नमाज कर दिया, और जब अल्लाह कहता है ये सलन नार, ये आग से जा मिलेंगे, तो वहां पे आप मिलना ही कर रहे हैं। एक ही लफ्ज है ना, इन्नल्लाह व मलाइकते यसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते दोनों नबी के साथ राबते में हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू है वो लोगों जो तुम बात मानते हो, सल्लू अलैहे तुम भी जुड़ जाओ उनके साथ, वसल्लमो पूरे के पूरे, तस्लीमा तस्लीम करते हुए, सबमिशन के साथ, सरेंडर करते हुए, अपनी मर्जियां और अपनी डिक्टेशनें हटा दो। अब आप इस सेंस में जो भी दुरूद पढ़ेंगे उसका मफहूम यही बनेगा कि बारे इलाह तू अपने महबूब से मेरा ताल्लुक जोड़ दे। ठीक हो गया
जी सर?
इसीलिए हमारे सिलसिले में जो असबाक हैं उसमें दुरूद खिजरी शामिल किया गया है। बस वो सारे अपनी जगह देखें, वो जाहिर है किसी भी, मुझे लगता है कि वो किसी अरब ने नहीं डिजाइन किए, वो फारसी वानों ने इजाद किए।
अच्छा।
क्योंकि वो लबो लहजे से अंदाजा होता है कि ये जो है ये पर्शियन मीनिंग को सामने रख के, दरूद का स्वल का पर्शियन मीनिंग जो है वो ऐड किया गया कि तू अल्लाह حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ خیر و برکت اور سلامتی نازل فرما جیسا کہ تو نے نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر. غور کریں ذرا. تو یہ میرا وجدان ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ بہتر یہ ہے کہ جو سلسلے کے اسباق والا درود ہے وہی پڑھیں, اسی پہ فوکس کریں, اسی کا مفہوم ذہن میں دہرائیں. دیکھیں نا, اصل بات تو ہے التجا کی. آپ اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ بار الہ تو اپنے محبوب سے میرا تعلق جوڑ دے. آپ اس مفہوم کے ساتھ درود شریف پڑھیں, انشاءاللہ آپ کو زیارت نصیب ہوگی. ویلکم.
السلام سر.
جی وعلیکم السلام.
سر میرا سوال ہے, ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا صرف مان لینے کا نام ہے یا ایمان جان لینے کا نام ہے؟
ایمان بات ماننے کے جذبے کو کہتے ہیں.
تو صرف مان لینا ہے یا جاننا بھی ہے؟
میں نے عرض کیا کہ ایمان کا مطلب ہے بات ماننے کا جذبہ. آپ نے عجیب و غریب کمالات دکھائے ہیں. جہاں لفظ قرآن میں ایمان پورا آیا ہے وہاں آپ نے اس کا ترجمہ ایمان و کم, وہاں اس کا ترجمہ دایاں ہاتھ کیا ہوا ہے. ہاں یا نہیں؟ جہاں لفظ آمنو آیا ہے وہاں اس کا ترجمہ صاحب ایمان کیا ہوا ہے. آمنو کا مطلب ہے بات مان کے تسلیم کر کے طے کر لینا کہ میں نے یہ کرنا ہے, اس کو کہتے ہیں آمنو. جب آپ ایک بات سنتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, پھر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے اس کو عمل کرنا ہے, اس کو کہتے ہیں آمنو, بات ماننا. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نا, آپ ایمان مفصل پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتی و رسلی, پڑھتے ہیں یا نہیں؟ آمنت. اب یہاں پہ آپ نے کہا کہ میں نے مان لیا, کس کو؟ اللہ کو اور اس کے رسولوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے فرشتوں کو. ہاں یا نہیں؟ اور یہ کہ اس تمام خیر اور شر کا خالق جو ہے وہ اس کی مقداروں کا تعین کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ ہے آپ کا ایمان. ایمان مطلب ہے, ہم نے دیکھیں یہ اصطلاحات جب آ جاتی ہیں تو اصطلاحاً کسی بات کا کیا مفہوم اصل میں بنتا ہے اور اصطلاحاً کیا بنتا ہے, اس میں فرق ہے. دیکھیں نا, آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہینڈ فری. اب لفظی طور پہ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ لیکن آپ اصطلاحاً ایک پرزے کو کہتے ہیں, ایک آلے کو کہتے ہیں جس کو آپ فون سے لگا کے اپنے کان سے لگاتے ہیں. کیوں جی؟ اصطلاحاً جو معنی ہوتے ہیں وہ اور ہیں, اور جو اصل میننگ پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو پھر آپ کو اس کے اصل معنی جب سمجھ آئیں گے تو پھر ظاہر صورتحال کچھ ڈفرینٹ نظر آئے گی نا. اب آمنو کا مطلب ہے بات ماننا. اللہ چاہتا ہے کہ آپ بات کو سنیں, پھر توجہ سے اس کو تولیں, اس کو سمجھیں, پھر طے کریں کہ آپ نے ماننا یا نہیں. وہ حالت جب ہوگی تو آپ کے اندر امن آ گیا. یہ لفظ امن سے ہے. مومن کا لفظی مطلب ہم نے صاحب ایمان کیا ہوا ہے. مومن کا مطلب ہے جو بات سن کر سمجھ کر طے کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو کیا ہوگا, اس کے اندر ایک حالت اطمینان پیدا ہو جائے گی. ایک امن آ گیا نا اس کے اندر, ٹھہراؤ آ گیا. اب وہ کھچڑیاں جو ہے پک رہی تھی اس کے ذہن سے ان سے بچ گیا. इसको अमन की हालत कहा गया ना, मोमिन वो जो ज़हनी तौर पे अमन की हालत में सुकून। ठीक हो गया जी।
नाना
साजिद जी का
एक किस्सा है,
उसमें
दो सवाल
पूछना। जी जी
इरशाद, वो थोड़ा सा किस्सा पढ़
दें आप, इशारा कर दें जी, बताएं क्या है सवाल, बताएं।
सर इसमें एक तो ये है कि वो उस पे एक वो अब्दुल वफार सर ने कहा कि नौकरी करते पढ़ने से नौकरी तो मिल जाती लेकिन अल्लाह नहीं मिलता, तो नाना ने कहा कि मेहनत करते बच्चे पालते अल्लाह मिल जाता जी। और एक ये था कि वो
रुक जाइए,
वो जो
अभी पहले इसी जुमले की वजाहत आले फिर दूसरा पूछिएगा, ठीक है, वरना मिक्सअप हो जाएगा। क्या कहा? नौकरी करते बच्चे पालते अल्लाह मिल जाता।
नौकरी करने से वो जो अब्दुल गफ्फार था उसने कहा कि नौकरी करने से वो नौकरी तो पढ़ने से नौकरी तो मिल जाती है लेकिन अल्लाह कैसे मिलेगा, तो नाना ने कहा कि मेहनत करते बच्चे पालते अल्लाह मिल जाता।
क्या मतलब बच्चे पालते, यानी कि देखें अल्लाह ने आपको एक सिस्टम का हिस्सा बनाया है, अगर आप औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे और आपको ये शऊर होगा कि मैं अल्लाह वास्ते कर रहा हूँ तो अल्लाह मिल गया कि नहीं
जी।
यानी हम लोग रूहानियत कहाँ ढूंढ रहे हैं? आसमानों में। और वो क्या कह रहे हैं कि भई ये जो तुम बीवी बच्चों को ध्यान रखना है, ये इनकी खिदमत करना और इस वास्ते करना कि ये अल्लाह की अता है, मुझे इनकी अच्छी तरबियत करनी है
जी।
क्या होगा? अल्लाह मिल जाएगा। आप अल्लाह के सिस्टम में, जब अल्लाह के सिस्टम को समझ के काम करेंगे तो जाहिर है कि आप अल्लाह ही को समझ के काम करेंगे तो अल्लाह आपको समझेगा, आपको उस तरह नहीं समझेगा जैसे कहते हैं अल्लाह तुम्हें समझे मतलब है फिर अल्लाह आपको करीब कर लेगा कि भाई ये बंदा मेरे कहने पे चल रहा है, जैसे मैंने चाहा वैसे इसने किया। देखिए ना, इनफरादी सतह पे हमारा क्या फर्ज है, इनफरादी सतह पे आपने अपनी नौ को रिप्रोड्यूस किया और फिर उसका ख्याल रखा कि ये आगे बेहतर इंसान बने, यही तो काम है सिस्टम, यही तो सिस्टम है, एक दूसरे को हमने बेहतर करना है। हम खुद को भी बेहतर नहीं बना रहे तो औलाद कहां से बेहतर हो जाएगी। अब दूसरा जुमला फरमाइए क्या था।
दूसरा ये था कि चारों तरफ जब जा रहे थे बाबा से मिलने, नाना से मिलने, तो आपस में बातें करते हुए जा रहे थे और उसमें एक जो था वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मिराज का घायल था और एक जिस्मानी। जब ये बाबा के पास पहुंचे तो बाबा वहाँ तस्वीर कुर्सी पे बैठे तस्वीर बना रहे, तो जब उस पे नजर पड़ी चारों पे तो वो बाबा ने तेवी चढ़ा कर कहा कि अंग्रेजी पढ़ के आए और कहते हैं कि हुजूर पाक को मिराज रूहानी हुई थी। तो वो दो दोस्तों वो लोग चारों चौक गए, दो बाहर खड़े रहे अंदर जाने की, दो अंदर गए अब्दुल वफार ने, तो फिर वो अब्दुल वफार ने कहा कि बाबा गलती हो गई माफ कर दे। उन्होंने पूछा नहीं कि अब बता हुजूर को मेराज रूहानी हुई थी जिस बार, फिर उन्होंने बाबा ने कहा कि कुर्सी पर बैठोगे फोटो उतरवा गए तो फिर समझ में आएगा, अच्छा अब बताओ। तो फिर उन लोगों ने ये पूछना था कि कुर्सी पर बैठोगे फोटो उतरवाओगे फिर समझ में आएगा, तो ये क्या मतलब ये
आप बताएं ना क्या मतलब हुआ कि भाई जिस्म के साथ बैठे हुए आप अपने इनर में सारी दुनिया को दिखा दिया उन्होंने, तो जिस्मानी हुई कि रूहानी हुई?
दोनों ही हुई।
हाँ, क्या मतलब हुआ? देखे ना, ये सारा लाशौरी कैफियत की गेम है और ये ताजुद्दीन बाबौलिया के लाशौर का ये आलम है कि वहाँ दो बंदे आपस में बात करते आ रहे हैं, उनके दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गई, आप देखें उन पे नजर पड़ते ही रिकॉर्ड सामने आ गया। अभी आपने पिछले महीने का, ये इसी महीने का आज की बात पढ़ा कि कन्वेयर बेल्ट है, उस पे गुज़िश्ता लम्हा भी मौजूद है, मौजूदा लम्हा भी मौजूद है और आने वाला लम्हा भी मौजूद है, देखने के लिए नजर चाहिए। अब जिसको वो नजर हासिल थी उन्होंने उस नजर से भांप लिया कि ये क्या बहस हो रही थी, उसका जवाब उन्होंने बता दिया अपने अंदाज में कि ये दोनों तरह से हुई, ये एक तरह से नहीं हुई, दिखा दिया ना कि मैं तो यहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ और मुझे तुम्हारी सारी बातें पता चल रही हैं, तो ये कैसे हुआ? हवास का इस्तेमाल। तो आप हजूर अलैहिस्सलाम को क्या समझते हैं कि वो हवास को इस्तेमाल नहीं किया, हवास ही को तो इस्तेमाल किया कि वहां तक पहुंच गए? ये सब हवास के इस्तेमाल का खेल है। ठीक हो गया
जी सर? ठीक, थैंक यू सर।
अस्सलाम
वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम
सर। ये अब्बा का एक कोट शेयर किया था, इसमें अब्बा ने फरमाया है, गलती या लगरिश हमेशा महदूदियत में सर होती है, ला तनाहियत में सरजद नहीं होती। सर इसको प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे?
जी बिल्कुल। गलती कहते किसे?
जो
भाई अगर आप महदूदियत के मुताबिक चल रहे हैं तो हम कहते हैं ठीक चल रहे हैं। अगर आप महदूदियत से बाहर निकल के यानी कोई हरकत करते हैं तो हम उसको गलत कहते हैं। तो गलती का मयार क्या हुआ? हमारे यहाँ गलती का मयार महदूदियत से बाहर निकलना है।
सही हो गया सर। अब जब ये पढ़ के जहन में एक और जी सर ये अब आदम की गलती से अगर हम इसको कनेक्ट करें,
लफ्ज गलती तो है ही नहीं, आदम ने तो क्या कहते हैं नाफरमानी की। गलती कब की हैं? उन्होंने कब कहा कि मुझसे गलती होगी? उन्होंने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना। जब वो जुल्म कह रहे हैं तो मैं और आप गलती कह के क्या आप किस पे पर्दे डाल रहे हैं?
ओके सही हो गया सर।
गलती वलती नहीं हुई, शैतान के बहकावे में आके नाफरमानी नहीं, बगावत के मुर्तकिब हुए वो।
जी सर बगावत के हुए, बिल्कुल हुए।
तो बगावत को गलती कहते हैं? वो तो सरासर हुक्म अदूली, अल्लाह ने मना किया इसके करीब नहीं जाना और वो चले गए, तो क्या ये गलती हुई? सुभान अल्लाह।
नो सर गलती नहीं हुई, ये तो बिल्कुल इरादे तौर पे खुद ही किया।
जी देखें, याद रखें, आदमी गलतियों से सीखता है।
जी सर,
बच्चा जो है वो पहले ही दिन निवाला मुंह में डाल के खाना नहीं शुरू कर देता।
बिल्कुल ऐसा ही है।
कितनी दफा गलती करता है तब जाके वो निवाले को संभाल के मुंह में डालना सीखता है।
ऐसा ही है सर, बिल्कुल जी।
हजूर अलैहिस्सलाम से सहाबा कराम में से किसी ने कहा कि हजूर हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि हमसे गलती ना हो। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने बुरा मनाया इस बात का, नागवारी का इजहार किया और कहा कि अगर तुमसे गलती नहीं होगी तो अल्लाह दूसरी कोई मखलूक ले आएगा।
जी सर जी।
क्या मतलब हुआ, तुम कोई रोबोट हो? नहीं, आप एक काम करना चाहते हैं, फर्ज करें आप साइकिल चलाना सीखते हैं, कितनी गलतियां करते हैं तब जाके आप साइकिल चलाना सीखते हैं। अब आप गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं तो कितनी बार गलती करते हैं तब जाके सीखते हैं। गलती चूंकि वो मैंने अर्ज किया कि लिमिटेशन से जब आप फॉलो नहीं कर पाते लिमिटेशंस को तो इसका नाम है गलती।
जी सर।
और अगर वो इरादी हो तो वो जुर्म कहलाता है, गैर इरादी हो तो गलती कहलाती है। आप उसकी इसलाह करते हैं तो वो गलती दुरुस्त, उससे सबक सीखते हैं तो सुभान अल्लाह काम हो गया।
जी सर हो गया,
वरना आप अड़ जाएं फिर ये बगावत कहलाती है।
जी सर, जी सर, सही हो गया सर, थैंक यू सो मच।
वेलकम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जी सर, आपसे ये पूछना था कि मवद्दत और मोहब्बत, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सवाल कर रही हूँ मैं, मोहब्बत और मवद्दत में क्या फर्क है?
कोई फर्क नहीं।
मवद्दत नहीं, इसकी डेफिनेशन पूछ रही थी बस।
जी मैंने अर्थ किया, कोई फर्क नहीं है। चाहने को कहते हैं, किसी के साथ नरमी से सलूक करने को मवद्दत कहते हैं और इसी को मोहब्बत कहते हैं। अब माँ जो है बच्चे के साथ, माँ का बच्चे के साथ जो ताल्लुक है उसमें माँ के अंदर नरमी होती है या नहीं बच्चे के लिए?
जी जी जी।
इसी नरमी को जिससे अगला दर्जा मोहब्बत कह लें। हम्म,
दिखावे की भी, मतलब कहने का मकसद सर ये था कि हम दिखा, वो हुजूर के जमाने में लोग जो है वो अंदरूनी तौर से बुतों की पूजा करते थे और वैसे क्या करते हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारते थे, तो मवद्दत और उसके अंदर यही फर्क है ना कि फिर हम अल्लाह के सिवा किसी को ना माने।
नहीं, इसका देखें बात ये, आपने लफ्ज मुअद्दत पूछा, ठीक है ना, और साथ में उसको कंपेयर किया मोहब्बत से, तो मैंने कहा दोनों एक ही चीज है। अब ये जो बात है कि वो पूजा करते थे, वो असल में इलाह मानते थे कि हमारी जरूरतें जो हैं वो पूरी करेंगे। ये जो बुत हैं, ये जो इलाह हैं हमारे, ये पूरा करेंगे किसको?
हमारी जरूरियात को।
हाँ जी, तो उनके जहन में ये था कि भाई अल्लाह कहता है इलाहुकुम वाहिदुन, तुम्हारा इलाह तो एक ही है।
बेशक बेशक सर, बेशक।
अब हमारी सारी जरूरतों का कफील अल्लाह है और हम अपनी जरूरतों का कफील किसी और को माने तो गड़बड़ कौन कर रहा है? जाहिर है हम कर रहे हैं,
हम कर रहे हैं।
हाँ, इस चीज से मना किया कि अगर तुम्हें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, उनकी अकीदत है, उनसे प्यार है, तो तुम उनकी बात भी तो मानो, अल्लाह को इलाह मानो। जी,
और दूसरी चीज ये पूछी थी, यौम-ए-क़यामत किसको कहा जाता है?
यौम कहते हैं बनावट को, हालत को, दौर को।
जी।
कयाम, यौमुल कयामा, यानी जब कोई चीज कायम कर दी जाएगी, वो हालत जिसमें किसी चीज को कायम कर दिया जाएगा। अब किस चीज को क्या कायम कर दिया जाएगा, इसकी शरह हजूर कलंदर बाब औलिया ने किताब लौहे कलम में फरमाई है। उन्होंने फरमाया कि मौत के बाद एक दौर आएगा जब आपके रूह के हवास तारी कर दिए जाएंगे, कायम कर दिए जाएंगे, यानी हवासों का खेल है। अभी इस वक्त हम जिस्मानी हवास में हैं, जब हम सो जाते हैं तो हमारे नस्मा के हवास काम करते हैं, जब हम इराफ में चले जाते हैं तो रूह और नस्मा के हवास अल्टरनेट होते हैं, अदल बदल होते रहते हैं। फिर यौमुल कयामा में जाकर क्या होगा कि अब आपके नस्मा के हवास भी खत्म कर दिए जाएंगे और रूह के हवास कायम कर दिए जाएंगे।
ठीक है सर।
इसको कहा यौमुल कयामा। यहाँ पे हमने और आपने जरा सा सैलाब आ जाए तो कहते हैं कयामत आ गई। गोया ये कयामत मरने के बाद कहीं एक दौर होगा जब आएगा, ठीक है, और हम और आप इसे आजकल माने बैठे हैं, जरा सा धमाका हो जाए कहते हैं कयामत आ गई है? हम दुनियावी तबाही को कयामत के मीनिंग पहना के बैठे हैं तो कसूर किसका हुआ? हमारी अकल का हुआ, हमारा क्यों हुआ? वो अकल जिसने गौर ही नहीं किया कि अल्लाह रब्बे करीम क्या इरशाद फरमा रहे हैं। देखे ना, मैं अल्लाह की बात को अपने माने पहना के बैठा हूँ, आप अपने माने पहना के बैठे, लिहाजा मैं और आप दस्तों के रे पाए। अगर हम दोनों अपने अपने मानों से बाज आ जाएं और अल्लाह की बात को समझने में जुट जाएं और अल्लाह करम करे कि हमें अपनी अपनी बात समझा दे, आपको भी अपनी बात समझा दे, मुझे भी अपनी बात समझा दे, तो हमारी कोशिश और काविश क्या होनी चाहिए कि हमें अल्लाह की बात को समझना है और हम उसी के चक्कर में पड़े रहे।
सही सर, हो गया, समझ में आ गया सर।
देखे ना, अगर मैं कलामे पाक को अपनी मर्जी के मफाहिम पहना के समझूंगा तो मैं अल्लाह की बात समझ रहा हूँ या अपनी ही बात को अल्लाह के अल्फाज में पेश कर रहा हूँ?
जी सर,
हम क्या करते हैं, हम अपनी बात की तस्दीक के लिए कुरान की कोई आयत कोट करते हैं। और करें, हम अल्लाह की बात को बराह रास्त समझने के चक्कर में नहीं पड़े हुए, लिहाजा हम चक्कर खा रहे हैं।
सही कह रहा सर।
और अगर हम इस चक्कर में पड़ जाएं कि भाई मुझे अल्लाह की बात समझनी है, तुम जो मर्जी कहो, मुझे नहीं कुछ लेना देना आपसे, आपका अल्लाह से एक बराह रास्त ताल्लुक है या नहीं है? तो जब आप अल्लाह रब्बे करीम से ये इल्तजा करेंगे कि बारे ला तो मुझे अपनी बात खुद समझा दे, ये दुनिया ने तो मुझे चला किया हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ने आप पे कर्म नहीं करेगा?
करता है, बेशक करता।
तो बस इतनी ही सी इल्तजा कर रहा हूं कि आपको, देखे ना, कुरान पाक मेरे और आपके लिए है। हमने कहा ये आज से 1400 साल पहले हजूर अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, ये जुमला क्या कर रहा है, हमारे और कुरान के दरमियान 14 सदियों का फासला हायल कर रहा है। अगर मैं ये मानूं कि अल्लाह रब्बे करीम ने एक इंतजाम के तहत अपना पैगाम अपने महबूब तरीन बंदे के जरिए मुझ तक पहुंचाया और बंदे ने ये कमाल किया है कि वो 14 सदियों के बीच में से ऐसे हाथ लंबा करके उसने मेरे सराहने ला के रख दिया, जब आप और मैं पैदा हुए तो हमें सराहने धरा मिला के नहीं, ये पैगाम मैं मान लूं कि ये मेरे लिए है तो जाहिर है अब मैं इसमें किसी और तरह से सर लगाऊंगा, अब मैं इसे समझने में कुछ और ज्यादा दिलचस्पी लूंगा क्योंकि ये अल्लाह रब्बे करीम का पैगाम है मेरे लिए। जब मैं इसे अपने लिए एक पैगाम समझ के इसमें सर लगाऊंगा तो अल्लाह मुझे वो मतालिब जरूर अता करेगा जो अल्लाह मुझे समझाना चाहते हैं। पता नहीं जी, मेरे इलम में नहीं है।
नहीं, जो है,
मैंने अर्ज किया कि ये बात जो मेरे सब इलम में नहीं है, मैंने अपनी आजजी का इजहार कर दिया ना कि एक चीज मेरे इलम में नहीं है तो उस पर मैं क्या तबसरा करूं।
ठीक हो गया सर।
भाई आपके हाथ में कलामे पाक है, इसे उठा के साइड पे रख दीजिए और इमाम मेहदी से जाके मिलिए, ये क्या बात हुई?
हो ही नहीं सकता,
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जेरे बहस हम बात कर रहे हैं कि ये कलाम अल्लाह का है और ये मेरे लिए, मुझे समझना है। अब जब मैं इसको समझने में आ गया, मुझे बताएं इसमें कहीं तस्करा है किसी इमाम मेहदी का? मेरे भी नहीं है ना, इसीलिए तो मैंने अर्ज किया कि मेरे नॉलेज में नहीं,
मेरे नॉलेज में नहीं है।
भाई आपके नॉलेज में सुनी सुनाई बात है, मेरे नॉलेज में वो भी नहीं है।
नहीं सर, सुनी सुनाई तो खैर बात नहीं है ये।
आप मुझे बताएं कि कुरान की किस आयत में इमाम मेहदी का तज़किरा है?
सर मैं ये आपको कंफर्म कर दूं।
भाई अल्लाह रब्बे करीम ने क्या कहा है? देना सिरात मुस्तकीम कहा, हुदल्लिल मुत्तकीन कहा। हिदायत किसने देनी है तो मेहदी कौन हुआ? हिदायत देने वाले को ही तो मेहदी कहते हैं। हेलो
जी सुन रही
हो? अर्ज ये है कि हिदायत देने वाले को ही मेहदी कहते हैं ना। मेहदी का लुग़वी मतलब क्या है? हिदायत देने वाला। तो असल हादी कौन है? ओ भाई असल हादी अल्लाह के बंदे कोई। मेरी इल्तिजा पे जरा तवज्जो दीजिए। मैंने अर्ज किया कि जो चीज जब आप कहते हैं कि ये किताब हुदल्लिल मुत्तकीन है, किसने कहा? इसी किताब में है। आप दुआ करते हैं अहदेन सिरात मुस्तकीम, हदायत दे मुझे सिरात मुस्तकीम की, किसको कह रहे हैं? अल्लाह को कह रहे हैं कि इमाम मेहदी को कह रहे हैं?
नहीं, इमाम मेहदी को हम नहीं कह रहे, लेकिन उनको जो कहते हैं कि वो आएंगे और मतलब
भाई जब आएंगे तब की बात, अभी तो नहीं आए ना।
हाँ
ओ हो भाई, एक चीज जो मुझे ये गैर यकीनी है उसके चक्कर में मैं क्यों पढूं जो सामने लिखी है? मैं उसको तो समझूं।
ठीक है सर,
थैंक यू। और कोई सवाल जी? जी वालेकुम
सर। मुझे निस्बत को थोड़ा वाजे कर देंगे, वो समझना था।
निस्बत इसका बड़ा आसान सी मिसाल है। आप देखें ना, किसी कॉलेज में दाखला लेते हैं
जी सर।
अब जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज में दाखला लेते हैं, ठीक है, तो उस कॉलेज के सारे टीचर्स और आपके सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको उस कॉलेज में दाखले की वजह से एक निस्बत हासिल हो गई ना सारों के साथ।
जी सर।
इसी तरह फर्ज करें आप डॉ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं।
जी।
जब आप किसी से मिलते हो कहता जी मैं भी डॉ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाऊँ, तो आप क्या कहते हैं? अपनाइयत महसूस करते हैं कि ये भी उन्हीं टीचर से पढ़ा है, उसी क्लासरूम में बैठा है जहां मैंने बैठ के पढ़ा है। आप पूछते हैं किस सन में थे, वो कहता है जी मैं 1976 में था। आप कहते नहीं मैं तो बाद में आई, 80 में आई। गौर करें। लेकिन निस्बत कायम हो गई। निस्बत का मतलब क्या हुआ? ताल्लुक। वो ताल्लुक जो किसी की वजह से होगा उसको निस्बत कहेंगे। अगर हमें हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं तो हमें उनकी निस्बत हासिल होनी चाहिए कि नहीं? यानी हमारा उनकी वजह से आपस में रब्त है, क्योंकि हम खुद को मुसलमान कहते हैं, मुस्लिम नहीं कहते, याद रखिएगा, क्योंकि हम मुस्लिम बनना ही नहीं चाहते। हम तो मुसलमान हैं, यानी तू मान के मैं मुसलमान हूं। नतीजा चूंकि बात को नहीं समझे, लिहाजा हमें छोटी छोटी बातों पे दुश्वारी होती है। अब जब किसी बंदे को निस्बत मिल गई, किसकी? हजूर अलैहिस्सलाम की। तो क्या होगा? उम्मत के बाकी सब लोग उसकी तकरीम करेंगे या नहीं करेंगे? इसी तरह जब हजूर अलैहिस्सलाम की आपको निस्बत हासिल होगी तो अल्लाह आपको महबूब रखेगा कि नहीं? क्योंकि आप उसके महबूब से निस्बत रखते हैं। बस इतनी सी बात का नाम है निस्बत।
इरशाद, तो सर को समझना चाह रही थी, थोड़ा सा वाजे कर देंगे प्लीज।
आपके बिजली के बिल आते हैं?
जी सर।
क्या लिखा होता है उस पे? मुअज्जिज सारिफ।
जी सर।
सारिफ का क्या मतलब होता है? सर्फ करने वाला, इस्तेमाल करने वाला।
अब
तसर्रफ को समझें।
जी सर।
तसर्रफ का मतलब है कि आप अपने हवास का इस्तेमाल इस तरह करें कि दूसरे के हवास पे असर अंदाज हो जाए। अगर आपके हवास में ताकत है, अगर आपके हवास में जान है, तो जाहिर है कि आप अपने हवास के जरिए दूसरे के हवास पे असर अंदाज हो सकेंगे। इसको तसर्रफ कहते हैं। अभी तो हाल ये है कि हम अपने ही हवास से आशना नहीं है, तो इसलिए लोगों के हवास हम पे तसर्रफ जमाए हुए। देखे ना, ये टीवी का प्रोपोगंडा क्या है भाई? वो जो चालाक लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो अपनी समझदारी से, अपनी चालाकी से एक बात आपके हवास में उंडेल देते हैं। मसलन आपने खबर सुनी कि सुनामी आ रहा है, आप लरज रहे हैं, आपको इत्तलाई के जलजला आने वाला है, आप लरज रहे हैं, क्या हो रहा है? वो अपनी अकल से आपके हवास पे तसर्रफ कर रहे और आपको कमजोर कर रहे, बिला वजह का हैजान और परेशानी क्रिएट कर रहे आपके अंदर, हाँ या नहीं? तो ये भी तसर्रफ की एक किस्म है। ये नेगेटिव तसर्रफ है। पॉजिटिव तसर्रफ वो है जो मुर्शिद करीम करते हैं आप पे, कि आपको इंस्पायर करते हैं कि अल्लाह वास्ते खुश रहो।
जी सर।
क्लियर हो गई बात? तसर्रफ किसे कहते हैं?
जी सर।
ठीक हो गया जी?
जी
सर। चले, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जी दुरूद शरीफ पढ़ा करें, दुरूद शरीफ पढ़े। देखें, जब हम दुरूद शरीफ की कसरत करेंगे, अल्लाह से इल्तजा गुजार रहेंगे कि बारे इलाह तू अपने महबूब से मेरा ताल्लुक जोड़ दे, अगर आपका ताल्लुक अल्लाह के महबूब से जुड़ गया तो निस्बत हासिल हो गई कि नहीं?
जी सर, उनके नेटवर्क का इशू है। जी सर,
ठीक हो गया?
जी सर।
चले, खुश रहिए, फिर रहती है बात। अल्लाह हाफिज।
बहुत शुक्रिया सर।
अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।